जल्दी बाजी में जाना तो
नहीं मतलब जी आपका
थोड़ा सा और लोग
हमारे रूप गोस्वामी के वीरा तिथि का तृतीय दिन है। पिछले दो दिन मथुरा वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान और विभूतियां आई थी और उनको स्वामी के चरणों में उनके जीवन का वैशिष्ट बतलाते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। आज हम लोगों के बीच में डॉक्टर प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं प्रधान अतिथि के रूप में। सर्वप्रथम श्रीमान भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी को पुचकाने के लिए उनके चरणों में पुष्पांजलि देने के लिए सभी लोग समय का ख्याल रखें। 15-20 मिनट
अपने भक्तों को प्रकाश करते उनके जीवन चरित्र
उनके शैली पर आपको दबाव तथा भजन आदर्श पर उनके भक्ति रस के विचारों पर अपना विचार व्यक्त किए। हम लोग देखते हैं जिन्होंने महाप्रभु जी के मनोनिष्ठ को परिपूर्ण किया है, ऐसे सुंदर गोस्वामी पाद जिन्होंने उनके अंतरंग भाव को उधार दिए हैं, जैसे हम लोग श्रवण किए हैं जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं में श्री राधा जी के रूप के प्रकाश श्री रूपमंजरी के रूप में कुंजों में एकांत रूप से सेवा करने वाले, परंतु उस प्रेमय सेवा का महत्व किसी को समझ में नहीं था। जबकि वे श्री रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए और उनके महाप्रभु जी के हृदय की भावना को उधार करके शास्त्रों में ग्रंथों में जब प्रकाशन कर दिया तब विश्व जगत चमत्कृत हो गए। कैसे उस महानुभाव सिंधु रस में अवगाहन करना है, जैसे कि शिव भक्ति रस में श्री भक्ति रस में सिंधु श्री उज्जल निमणि आदि ग्रंथों में विस्तार किया। शिव रूप गोस्वामी पर उन्होंने श्री भक्ति रसामृत सिंधु के विचारों में जहाँ पर शुद्ध भक्ति को विश्लेषण करते हुए कहा कि अपना उदास का सुनना ज्ञान करो आप तनाव देता। आज सारी दुनिया को देखा जाए ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जो कि भगवान से प्रार्थना नहीं करते, पूजा अर्चन नहीं करते, परंतु सबके हृदय में कामना वासना होती है, संसार सुख की वासना बहुत ही सुख के लिए भगवान के द्वार पर प्रार्थी होते हैं, परंतु इसको कोई भक्ति नहीं कही जाती है। भक्ति तभी होती है जब संपूर्ण रूप से अपने को समर्पण करते हैं। साधु सारत, एक साधक पुरुष कैसे सेवा करेंगे एक साधक शरीर से, और सिद्ध स्वरूप में मन की जो सिद्ध देह करी अभाव रात्रि दिन से प्रति राधा कृष्ण का चरण मन ही मन सिद्ध स्वरूप की भावना में चिंतन कर रहे हैं समुद्र ज्ञान से युक्त होकर, जबकि उस भावना को लेते हुए प्राकृतिक अनुवाद को छोड़कर जब उस चिंतन में डूब जाएगा तो भौतिक भौतिक जीवन का जो भौतिक अहंकार अनुमान है ये सबसे मुक्त हो सके। तब से चैतन्य महाश्रवणी के तेनागत सुनी मंत्र लेते ठीक हो पाएंगे, अन्यथा भौतिक अभिमान प्राकृतिक शरीर का अभिमान अहंकार लेकर के भजन करते हैं बहुत से लोग, फिर देखा जाता है कुछ दिन बाद पतन होता ही गिरता है। इसलिए श्री रूप स्वामी बाद ने कहा है सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातर ही पर भाव सुना कार्य ब्रजलोक अनुसार है। ब्रजलोक के अनुसार उन भावों को प्राप्ति करने के लिए उन अपने अपने जो कि स्वजातीय असर सिद्ध भागवत रसिक स्वतो भरे ऐसे रसिक जनों का संग करते हुए उन भावों के प्रति लक्ष्य करके भजन करता है, तब एक एक भाव की प्राप्ति हो। कृष्ण स्मरण जलन कृष्ण का स्मरण करते हैं तभी जनों का स्मरण करना भी चाहिए। कृष्ण स्मरण जलन जो बेष्टम नियम समिहितम तत्त तथा रतस्यासो पुर्जा वासम प्रदेशरा, मन के द्वारा शरीर के द्वारा कैसे भी प्रयोगवास होना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी बात वर्णन करते हैं वह नंदगांव जहाँ पर एक लड़की की शादी होती है और बहुत दूर की है, उसको पता भी नहीं कृष्ण का और न कृष्ण नाम का कभी जीवन में सुना भी नहीं, परंतु धाम का इतना प्रभाव है वृद्धाम का धूल कण का इतना प्रभाव जैसे वो पाते से होते जमीन को स्पर्श किया जमीन में पैर धरते इशारे इशारे उसके मुंह से कृष्ण नाम स्फूर्ति होने लगता है। इस प्रकार वृद्धाम कृष्ण की लीला भूमि का इतना प्रभाव धूलों का इतना प्रभाव कृष्ण की स्फूर्ति अपने आप हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने वर्णन किया कि कृष्ण स्मरण जलन चास्त्र प्रेष्टम नियम समिहितम तत्त तथा रतस्यासो पूर्जा पासम प्रदेशरा, हमारे गुरु वर्ग ने हमेशा गुरुओं ने यही सिखाया कि वृद्धि मार्ग रत जने साधन धनता रत्न बने, जबकि राग मार्ग के तरह प्रवेश अब विधि मार्ग में सभी को विधि मार्ग अपनाना होता है, तीर्थ करना और नियम से उठना खाना पीना सोना मंगल आरती कीर्तन भजन सभी में नियम का ही अनुशीलन किया जाता है, नियम को फॉलो किया जाता है, यह तो विधि रहा है। परंतु साधक के हृदय में जब स्वाभाविक प्रवृत्ति आ जाती है तब उसी को साधन कर नहीं जाती है, जब मन की भावना उत्कंठा भगवान में लगती तो आसक्ति युक्त भजन इसी को गुरुओं ने सिखाया। जब तक ये नहीं होता है तब तक हमारे भजन साधन की पूर्णता नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जब कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ ममता हो प्रगाढ़ आसक्ति हो तब भाव की प्राप्ति होगी और हृदय शुद्ध शब्द होगा। उसमें क्या है कि लालजी के सार सौम्यता भक्ति जब हृदय में प्रकाशित होगी तब हृदय अशक्त होगा अन्यथा कदापि संभव नहीं। इसलिए उनका कहना है कि करोड़ों जन्मों तक कोई व्यक्ति साधु भजन करता है भाव की प्राप्ति नहीं होती है। यमुन सोहन ने जिससे राधा जी का महाभाव सुदूर पराकाश का सुदूर पराकाश है, परंतु उनकी छाया में जब कोई आता है तो उनको अवसर को प्राप्ति हो जाती है। अतः भक्ति जो है कृपा सिद्ध है, कृपा के बिना कोई उपाय नहीं, साधन करते हुए भाव की प्राप्ति हो वो वैकुंठीय भक्ति वैकुंठीय भाव को प्राप्त कर लेगा, परंतु जब कृपा के द्वारा सिद्ध होता है तब तो वो ब्रजभाव को ही प्राप्त कर सकता है राधा जी के भाव को। इस प्रकार उन्होंने उन भावों का विवेचन किया और प्राप्ति के साधन विषय को दिखाया। अब एक हम प्रसन्नित करें, वे राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का आस्वादन करें। इसी प्रकार उन्होंने जहाँ की चरम विरह का वर्णन, जो कि एक ग्रंथ में वर्णन किया अहंस रूप में राधा जी के चरम विरह के वर्णन, और जिस वर्णन में यह भी दिखाया कि प्रेम की कोई भाषा नहीं, प्रेम मुख होता है, उस प्रेम की कोई भाषा नहीं, प्रेम की भाषा केवल दो बूंद आंसू है और कोई भाषा नहीं हो सकती है। यदि हम कहते हैं कि हे कृष्ण तुम्हारे विरह में तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती और तुम जल्दी आओ, तो इस प्रकार कहने से प्रेम उद्घाटित हो जाता है, हल्का हो जाता है, कर्पूर के समान उड़ जाता है। इसलिए अंत में जहाँ बोली भी बंद हो जाती है, भाषा भी शब्द भी रुक जाता है, वहाँ केवल हृदय की भावना होती है। अंत में कहते हैं, हे श्याम सुंदर तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, दोष है तो काले का। कैसा दोष है कि जैसे मोयल अंडा देती है और कौवे के घोंसले में रख के आती है, कौवा समझती है कि ये मेरी अंडा है और उसमें बैठ करके जबकि उसमें से घुट करके कौवा का बच्चा निकलता है, बड़ा सुंदर बच्चा मोयल का बच्चा है, पर कौवा समझती है कि ये मेरा बच्चा है, तो उसका लाड़ प्यार करती रहती है। जब बड़ा हो जाता है, पंख हो जाता है, उड़ने लगता है, उस समय कोई कोयल पेड़ की डाल के शाखा में बैठ करके कुहू कुहू आवाज लगाती है, और इस समय इधर में क्या होता है, तो जो बच्चा कोयल का बच्चा था और वो कुहू कुहू आवाज सुन करके उड़ के चला जाता है, तब वो कौवा देखती रहती है ये क्या तमाशा हुआ, हमारे बच्चे कैसे उड़ के चला गया, वो दूसरे के पास में कैसे पहुंचा। तो ऐसे ही स्थिति है यशोदा की, कि यशोदा ने सोचा कि यह हमारा ही बालक है, परंतु आज बड़े होते ही जो वो बालक उड़ के दूसरी जगह चला गया और हमने भी यशोदा के बात समझ कर उन्हें प्रति की, तो हमारा उनका कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारे ललाट का ही, हमारे भाग्य का। इस प्रकार की चरम स्थितियों का वर्णन करते हुए स्वयं विरह समुद्र में डूबते हैं, वे वर्णन करते हैं गोवर्धन तट प्रांत कुंज कुटी का निवास, जो कि गोवर्धन के तट प्रांत में कुंज कुटी में निवास करने वाले ऐसे रसिक संत जन राधा कृष्ण के विप्रलम्ब रस के महाध्वनि, राधा कृष्ण के विप्रलम्ब रस के महाध्वनि, ऐसे संत पुरुष, ऐसे संत पुरुषों का जीवन में आश्रय मिल जाए, उनके चरणों का आश्रय मिल जाए, कृपा करुणा की एक कणा भी प्राप्त हो जाए, तो हम सबका जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा। इस प्रकार श्री रघुवंशायपाद ने अपने वचनामृत के द्वारा संदेशों को प्रदान किया, मैं इन्हीं भक्तों को भक्त के साथ में आज उनके चरणों में शत शत पुष्पांजलि के लिए समर्पण करता हूँ।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा विवेचन किया है गोस्वामी के वैशिष्टों को बतलाया गया। अब रसानंद श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी क्या
नाम
अरण्य महाराज
Thank you.
They have the conception that, oh, why should Radha Krishna ever be separated? What is the value of this? But Srila Rupa Goswami Maharaj, to establish the innermost cause, Sarva Chaitanya Mahaprabhu, and manifest Prema Rasa in its fullness, he has shown the speciality and the glory of Vipranam Rasa. Separation. Mood of separation. What kind of separation? In his Grantha, Srila Rupa Goswami Maharaj described Purabharata. Separation prior to meeting together. For example, in his Vidyatavada Grantha, then he discusses how Radhika, even prior to meeting with Krishna, provide this or hold it in prayer for him. So she writes one letter and sends the letter to Krishna. Oh my dear friend, since your beauty, sweetness and qualities have been impressed upon my heart, now, wherever I turn, I see only that you are blocking my path. Krishna, hearing this, he did not show the joy in his heart, but said, oh, what kind of behavior is this? This is quite wrong. This is against the sadhachara kulastri. Proper behavior for those chaste ladies in a very honorable family. It leads not to happiness in this life or in the future. And he rejected her advice. When Radhika heard this, she came on the bank of Yamuna, Srila Rupa Goswami Maharaj described, Akaruna Vishnu Yadiva Tavaka Tatamitam Mudavaro Vivani Guru Pranam Mutarvim Tamalasya Skandirinja Vinita Vala Yadiham Tata Vrindaranya Chiram Manjala Tishnantim. Radhika took off her necklace to give to Vishakaswati, or just as a person who is about to die distributes their favorite things about their near and dear ones. Vishakaswati began to cry, understanding Radhika's intention. Radhika said, oh, why are you crying? If Krishna will not be merciful to me, if Krishna will not show any kindness to me, then why should you cry? Because this is not your fault. This is no fault of yours. So don't cry. Don't be upset. But can you do one thing? Please arrange my funeral ceremony, my last rites. Now I will leave this body. You should wrap my arms around the tamal tree on the back of Yamuna, so that my body may remain here in Vrindavan forever. Began to cry, and Radhika was ready to give up her life. She went into meditation. But there lay Krishna from in the bushes. He had been watching and realizing. At this time, Radhika's Purvara and Krishna's Purvara, such a high state, Krishna came out from there and stood before Radhika. And she's meditating with closed eyes. The lady said, oh, sir, open your eyes. Krishna's in front of you. Open your eyes. Oh, is this true? Of course. Is this real? Or is this a dream? She cannot understand. And so much joy there and then. But in a moment, oh, Trishala came there and was very happy. And he blessed me with my daughter Lord alone. You spoke so many girls in Vrindavan. Only my daughter Lord has escaped unharmed. And took Radhika quickly away. So this separation, before meeting, Purvara. But what meeting comes after Purvarak, Sanchez Sambho? Or brief meeting. That's very beautiful. Rupa Goswami Maharaj described Man. Man is another type of separation. In Uttalika Valikanta, there, Radhika is very upset with Krishna. And she told Rupa Manjari, Shato Yamna Viksha Purani Rayama Tadadeha Yusantam Sri Vesham Subalasuritam Bhagavira Idam te sakutam vachanam avadaryas chadhi svato pagopapapam avadatsami nivaham. Krishna is shut. Very treacherous person. He speaks sweet words to your face and behind your back makes only offenses. It's called shut. So he's shut. Satoyam navik shalapura. I don't want to see his black face again in my image. I have my pride. So I want you to stand outside my cushion, make sure he does not come in, but be careful. Vishantam Shri Vesham Subala Suridam Parayatya. That friend of Subal, she cannot even take the name of Krishna. That friend of Subal. is very tricky. This friend may dress him up like a sati, like a gopi. And in disguise, he may come here and try to meet you again. So you should be there and watch out for him. And if he will come and you recognize him even, he will speak such sweet words to bewilder your mind, he will change your mind. But don't, otherwise you'll solidly still have to fight for make your heart strong. And don't give in to him, don't listen to his sweet words. Don't let him, right? Srila Gurudev explained, why is Vatican giving this responsibility to Mukhamantri? Why? Because Lalita and Vishaka, they have samasneha, equal love for Radha and Krishna. So sometimes they can take Radha's side, or sometimes they may take Krishna's side. But Sri Mukhamantri will take Radha's side, and take Radha's side, and take Radha's side. She will not take the side of Krishna under any circumstances. So Radha can entrust this seva to Sri Mukhamantri. This man. So Rupa Goswami Pad described that after this separation man, another type of sambho meeting takes place, sankirt sambho. Sankirt sambho. Somewhat restricted meeting. Why? This meeting is like drinking hot sugarcane juice. Hot sugarcane juice is so hot, it burns the mouth. But you cannot speed it up because it's just so sweet. So after man, the meeting that takes place, sankirt sambho. Meeting with Krishna is so sweet, but at the same time so burning, remembering that before he has done some offenses. So Sri Goswami Pad is right. After man, sankirt sambho. Praying by chitta, not as a separation in meeting. Kinchit dur pravas, separation after Krishna has been away at some distance. Such as at the time of Rasa Lila, when Krishna was hiding and watching the separation of Uddhava Gopis and Radhika. After Kyatesu Yadu Charanamburu Antanameshu, Vikashanai Kyaraki, Mahatabhi Sheshu, Kena Adavirva Tasmitabhya Tatekas, Sakimsud Purvadi Vikramati Bhavadai Shamaha. Hearing this, Krishna Guna Chakitab, and there can be a Vasavadira Mushuri Smayaman or Kapanyam. Such a manmata manmata. This meeting that takes place after Kinchit Dur Pravas, Sampanna Sambho, meeting which is accomplished and successful. And Sudirga Pravas, separation that takes place when Krishna goes to reside very far away in a distant land. Rupa Goswami Pad described how when Krishna left Vrindavan, how is Radhika's separation mood? Divya Maja Chadapa Udhina. She's weeping. Vananda Kula Chandra Vasiki Chandra Kalankriti Vamanda Lura Lila Vaha Vanda Surenda Nila Jukti Parasara Satandali Vasaki Jiva Raksha Oshandi Oh, where is the son of Nanda Maharaj, who appeared like the moon in his majesty, who wears a peacock feather in his hair, whose complexion is like Angelina Mani? Who is the hero of the Rasa Lila? Who is the only medicine to save my life? He's my treasure, my best friend. Where is he? Oh, I condemn the key the creator for making my fate and have to weep and weep. And in this mood, Radhika is fainting and dying. Then Lalita Sakhi, seeing that Radhika is about to die, said, oh Radhika, Krishna, you think he's dead and gone far away? You don't think so. He's only playing a trick. Just like at the time of Rasa Lila, he was hiding and watching us. Simply, he did not leave with Apura. Only he's making a trick that he's left with Apura. He's somewhere now, here in the forest of Vrindavan. Let's go look for him. Oh, at once, right? Yes, that Krishna is very tricky. Perhaps he did not leave. And at once, Radhika gets up and with the little Vishaka, moving all over Vrindavan, sometimes on the bank of Yuna, sometimes in the caves of Govinda, and searching for Krishna everywhere. At that time, Radhika Shishore, Chandravali, that person who was her rival at the time of Krishna's Lila here. And Radhika said, oh, beautiful Chandravali, for such a long time I wanted to meet with you. Can you tell me, where has Krishna gone? Where did he go? baptized through grace of Shama Sundar. So give your mercy to me and embrace me with your two arms, which will become fragrant from the touch of the ear ornaments of Sri Krishna. And Radhika went to embrace Sangavali, then she realized. Lalita Sami said, oh, this is not Sangavali. What is that? Oh, Radhika, that is your own reflection, reflected in the crystals of Giraj Govardhan. Separation, boom. She saw, oh, there's a Kura taking Krishna away. I will run and take Krishna down from the chariot. And Radhika goes running there. But when she arrives, she said, this is not the chariot. This is one girl covered in golden flowers. This is not Sri Krishna standing on the chariot. This is one tamal tree. And this is not Bakura taking him away. This is one tiger sitting at the foot of the tree. In this way, Radhika, she can bear separation. And Rupa Goswami described, now she entered into the waves of Jamuna at Kelantilam Tirtha. And in this way, disappeared into the Jamuna. Now, the followers of Rupa Goswami were in a great dilemma. The followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu's followers were in a great dilemma, because Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Srimad Bhagavatam Pramanamalam. Our best grantha is Srimad Bhagavatam. It is full of rasa and sweet pastimes of Radha and Krishna. But on the other hand, we see the description of Rajalila so much short. And then so much description of Mathura and Gaurdalila, many, many, many chapters. Srila Kavikarnapu, he has written Ananda Vrindavan Champu. And he has summarized Srimad Bhagavatam. But what only up to Rasalila, Kundalila, and Holy Lila, up to this point, not more than this. He has not described Mathura Raman and going to Gorkha. Why? Too painful. How can he do it? So on the one hand, for the other Jana Chaitanya Mahaprabhu, to reach Srimad Bhagavatam, how Krishna has left and going to Gorkha, very difficult. How can they maintain their life? And on the other hand, Mahaprabhu said, oh, this is our best grantha. So Srila Rupa Goswami part, to pacify the hearts and save the lives of Sri Chaitanya Mahaprabhu's Anugatajan. He reconciled all the pastimes of Srimad Bhagavatam by describing how Radhika, giving up Navadi Jamuna, or went up to the planet of Suryadev, and then was given by Suryadev to Satyadev and became Satyabhama. And when Krishna was in Gorakha, there in Navabrandava, Krishna discovered one naughty of himself that was being worshipped by God. At that time, he didn't know who is worshipping this naughty in such an extraordinary way. And heard someone was coming, he told Balaram, I'll take this away into the forest. I was standing near the naughty. And Krishna stood there as naughty. And Radhika, she approached him. When Radhika saw this naughty, he said, how beautiful, how wonderful Vishwakarma has made a beautiful naughty of Krishna. And Krishna seeing Radhika, she's thinking, how beautiful Vishwakarma has made one naughty of Radhika. Now Radha and Krishna meeting face to face with each other after a long time separation. But both of them think, oh, where is Radhika? Krishna thinking, where is Radhika? She is disappeared in Jamuna. And Radhika is thinking, where is Krishna? He's Mathura now. Not Gopi, she's still in Mathura. And face to face they are meeting. And so much separation. Same time. So in this way, Srila Rupa Goswami part. He showed how, well, if there's only Mithila, it's not a meeting, then where is the rasa vaisitya? All the specialities of rasa. But if so many beautiful types of separation, purvara, man, prem vaisitya, pravas, sudhir pravas, on the basis of these types of separation, then the different types of meeting come, sanchev sambhog, sankirin sambhog, sampada sambhog, samuridhiman sambhog, all the rasa meeting together, oh, is nourished by the separation. So Srila Rupa Goswami gave the conclusion, na vina vikulangena sabhoga pushtim ashtrate. Without separation, then how can meeting be nourished? And in this way, among so many ways, but this way, especially Srila Rupa Goswami part, he fulfilled the desire of Chaitanya Mahaprabhu. One more small point. Srila Gurudev explained, for those who are the followers of the Rupa Goswami part, he has separated mid-bhakti from pure-bhakti. And you got the into, then Dasasaki Vatsaya, Madhurya. And Madhurya into Sambhogi Sumai and Tantat Bhakti Sumai. And this Tantat Bhakti Sumai also Samasmaya, Visamasmaya. And within this, Bhava Vasanati, moon of the Dasis of Manika. And we find this as the goal of life. Yashila Gurudev, he said, one more thing, on top of this, Srila Raghunath Das Goswami Pad prayed to Srila Rupa Goswami. Srila Rupa Mantri Gashatam Padamatma Kostendananda Mudagata Vasakaya Hamodatakana Kamori Padadavata Sabahanani Shantani Stavani Kariste. When Radha Krishna Pilate reclining with a heavy lap of Krishna Chandra, at that time, Rupa Mantri Masajim Kamori speaks, I will look with greedy eyes. When will that day come that Rupa Mantri will fall me with my eyes and keep the lotus feet of Radhika in my back? And I will massage the feet as Sri Rupa Mantri takes the chaman and plants the divine couple. Srila Gurudev revealed the very inner meaning of this verse. What is that? That, within the rasa, Madhurya rasa, within the Madhurya rasa, Tata Bhavi Chamani, within this, Bhava Rasurati, but especially within this, the meaningful and the aim and objective, the most cherished objective of those who are Rupa Nuga. That is to attain the Vashishtha Seva of Sri Rupa Mantri, the remnant of Sri Rupa Mantri's service. Why? As the Sakis have manifested from Vrishma and Nandi Vishnu and Yoreka, as the Mantris they have manifested, as the Mantris from Rupa Mantri, wherever the moon is in any Rasya Radhika, all moons are in Rupa Mantri. So to attain the Vashishtha Seva, for the remnants of our service, is the highest goal for any devotee in the line of Srila Rupa Goswami. So the conclusion is, Sri Rupa Mantri Vara, Saimona Samora, Saimona, Vajna Pudyan, Saimona Pranadan, Saimona Avana, Saimona Jivan and Jivan, as well as Srila Narakanda Thakur expressed, to maintain the Tran Samunda, the lotus feet of Sri Rupa Mantri, thereby life and soul. This is the method of Bhajan of those who are in the line of Srila Rupa Goswami. In this way, only taking the remnant of Srila Gurudev's astonishing and wonderful glorification of the lotus feet of Srila Rupa Goswami, and the Nash Bhajan of Mandri, and the lotus feet of Bhajan of the
very good. My hearty blessings to you. And my daughter, Srivastava ji, se nivedan karunga ki Sri Rupa Goswami ke jivan ke vaishishtya aur charitra par kuch bolte hue unke charan mein pushpanjali karna.
नमस्तस्मै भगवते कृष्णाया स्वरूपमेधसे राधा सुधा सिंधो मनोहर राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपं कलात्मानं कुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा वृन्दावन कलानाथौ हृदयावन ृद्यो वैष्णुभ्यो नम परम पूज्य पाद विराजमान सदन्य स्वामी श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नारायण गोस्वामी महाराज समुपस्थित श्रद्धालु भक्त वृंदो वैष्णव वृंदो माता श्री रूप गोस्वामी पाद तरोहाव पर्व के अवसर पर मुझे स्मरण आता है उनका वैराग्य भाव. देखिए श्री योग गोस्वामी पाद ने जिस वैभव का प्रत्याग किया उस वैभव का प्रत्याग करना नितांत ही असंभव है मानव मात्र के लिए। लेकिन जन जन्मांतरों के पुण्य संस्कार स्वरूप उनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने अटूट संपत्ति का क्षण भर में परित्याग कर श्री महाप्रभु की शरणागत होकर अपने जीवन को वृंदावन की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने यहां आकर भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान अद्वितीय भक्ति ग्रंथ का प्रणय किया। उज्ज्वल नीलमणि जैसे रसस महोदधि का प्रणयन किया और भी अनेकानेक कृतित्व उनका स्मरणीय वंदनीय पठनीय चिंतनीय आज भी वर्तमान में विद्यमान। ऐसा महान अवदान किस प्रकार में कर सके? देखिए, बिना कारण के कार्य की सिद्धि असंभव है। कौन सा कारण था कि वे इन महान अद्भुत ग्रंथों का प्रणयन कर सके? श्री वृंदावन की ओर आकर श्री वृंदावन में अखंड वास प्राप्त कर श्री गुरु चरणारविंदों में निरंतर निमज्जित होकर श्री आधार गोविंद के पावन चरणारविंदों में निरंतर चिंतन मनन युक्त होकर अपने जीवन का यापन करते रहे, वह कारण क्या है? एक ही कारण है, परम वैराग्य भावना। परम वैराग्य भाव ही एकमात्र कारण है जिस वैराग्य के निमित्त उन्होंने श्री आधार गोविंद के चरणारविंदों की प्राप्ति की और जिस भक्ति भाव में अपने मन को निमज्जित कर महान भक्ति रसामृत सिंधु का निर्माण किया, एकमात्र वैराग्य ही उसमें निमित्त बनता है। राग तो सब कोई करता है, संसार से राग का होना तो प्राय मानव के लिए जीव मात्र के लिए स्वाभाविक है, लेकिन वैराग्य होना नितांत ही कठिन। श्रीमद् भागवत में उल्लेख आता है कि जितम जिते सर्वम अल्पे रसा, कि सर्वस्व पर विजय प्राप्त कर लेना आसान है किंतु रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करना नितांत ही असंभव है। हम अपने समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त करके दिखा देता है वही वैराग्य का संपूर्ण स्वरूप अपने हृदय में धारण कर सकता है। श्री योग गोस्वामी पाद ने वैराग्य की सीमा को स्वीकार किया। श्री वृंदावन का सेवन करते हुए उन्होंने कभी भी रसनेन्द्रिय के प्रति अपने मन को आकृष्ट नहीं होने दिया और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने महान ग्रंथों का प्रणयन किया। आप जानते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद श्री वृंदावन में कोई कुटी बनाकर रहना पसंद नहीं करते, वृक्ष वृक्ष के नीचे रहना भी उनको विपरीत। वे बहुत ही साधारण सामान्य जीवन यापन करते हुए निरंतर प्रभु के गोविंद के गुणानुवाद में निरत रहते। भक्तमाल में वर्णन आता है छप्पे का, गोस्वामी नाभादास जी ने उनके छप्पे जीवन चरित्र के संबंध में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात को लिखी हुई है। संसार स्वार्थ सुख बात जो दो रूप सनातन त्याग। संसार के स्वाद को सुख को उन्होंने बाप की तरह विमत यानी वोमित से अंग्रेजी में कहते हैं पलटी या उल्टी की तरह उन्होंने त्याग दिया और फिर कभी उसको दृष्टिपात नहीं होने दिया। निरंतर अपने आराध्य के चरणारविंदों में ही अपने मन को ध्यानस्थ किया। भूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्ति तोष उद्धार की ब्रजभूमि के रस रह श्री राधा कृष्ण की रस रहस्य का उजागर करने में उनका जो महान योगदान है उसका कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता। भक्ति की क्रांति में अपने योगदान का जो उनका महत्व है उसका कभी विस्मरण नहीं किया जा सकता। विक्रम की 16वीं शताब्दी भक्ति की क्रांति के लिए प्रसिद्ध है और जिसमें रूप गोस्वामी पाद का अवदान सर्वप्रथम है, महान है। देखिए हम मंजरी भाव की बात करते हैं, मंजरी की भाव की भावना या राधा भाव की भावना करना बहुत आसान है, वर्णन करना, विवेचन करना, एक्सप्लेनेशन करना, डिस्क्रिप्शन करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी प्राप्ति नितांत असंभव है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उस भाव की प्राप्ति करने के लिए हमें जो आनुगत्य भावना है सेवा, उसको पहले स्वीकार करना पड़ता है और उससे भी पहले गुरु शरणागति को स्वीकार करना पड़ता है। क्यों? गुरु ही उस भाव भक्ति, उस रस रहस्यमयी भक्ति की ओर उसका मार्ग प्रशस्त करता है, हमारे हाथ में दीपक, प्रज्वलित दीपक रखता है और अंधकार को उस दिव्य रस निकुंज के मार्ग को प्रकाशमान बनाकर हमें आगामी करता है, बनाता है। भाव विभोर हो जाना, किसी ने एक मुझसे प्रश्न किया, भक्ति नृत्य करती है वृंदावन में, धन्यम वृंदावन तेनु भक्ति नृत्य की प्रचार, तो पूछता है कैसा नृत्य करती है, कोई दृश्य है, कोई स्वरूप है, तो मैंने बताया तुमने कभी नितय गौर हरि को नाचते हुए देखा है? बोले हाँ चित्रमय मैंने देखा है। मैंने कहा बस भक्ति के नृत्य करने का स्वरूप यही है, भक्ति नृत्य करती है महाप्रभु के स्वरूप के अनुरूप ही भक्ति का नृत्य है। वह भोजन क्या करती है? भोजन नहीं करती, भक्ति भजन करती है। भक्ति भागती नहीं है, नित्य नृत्य करती है, एकाग्र होकर स्थिर होकर नृत्य क्रीड़ाशील रहती है, भक्ति नृत्य करती है। वही उसका कर्म है, वही उसका व्यवहार है, वही उसका स्वरूप है और इसीलिए वृंदावन में कहा गया है भक्ति नृत्य करती रहती है। भक्ति का एक ही कार्य है नृत्य करना, क्रीड़ाशील रहना, नित्य ही गोविंद का गुणानुवाद करना। क्षमा करिए, जो श्री वृंदावन में आकर भजन की अपेक्षा भोजन को ज्यादा महत्व देता है वह भक्ति से मानव कोषों दूर चला बनता चला जाता है, वह भक्ति के समीप नहीं पहुंच पाता। या तो भोजन कर लीजिए या भजन कर लीजिए, दो ही काम होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता है। तो ये प्रलोभन भक्ति पहले लोभ देती है आस्वाद का, आस्वाद का, जिह्वा के स्वाद का लोभ पहले भक्ति देती है और यदि कदाचित हमारी रसना उस आस्वाद में निमग्न हो गई तो समझ लीजिए भक्ति से हम बहुत दूर चले गए। और हमने यदि समझ लिया, सावधान हो गए, गुरु कृपा आ गई हमारे ऊपर, तो हम उसकी आस्वाद की ओर कदापि आकृष्ट न होकर भक्ति की ओर उन्मुख हो जाते हैं। फिर वहां हमें राधा गोविंद का वह दिव्य स्वरूप सेवा भाव का दर्शन में होने लगता है। भक्ति वस्त्र सामने सिंधु में भक्ति का बड़ा ही गहन गंभीर विवेचन है। लेकिन मैंने जो देखिए किसी भी वस्तु का विषय का वर्णन बड़ा विस्तृत होता है, विशाल होता है, हमें उसमें ऐसे जैसे समुद्र है, समुद्र बहुत बड़ा है, उसमें सब कुछ है, सीपी भी है, मुक्ता भी है, मणि माणिक भी है, नाना प्रकार के गौंगे आदि तुच्छ पदार्थ भी है, तो हमें मणि माणिक की मुक्ता की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके लिए हमें निरंतर प्रयत्नशील रहना है, सतत चेष्टाशील रहना है। तो यहाँ श्री वृंदावन में भी यदि हम वैराग भाव से आ गए तो क्षमा कीजिए आपका वैराग भाव स्थिर बना रहेगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता। अनुभव बताता है कि यहाँ आने पर वैराग में कमी आने लगती है और वैराग में कमी आने का कारण एकमात्र दृष्टि को बाह्य रूप में लगा देने से, यदि हमने बाह्य रूप को दृश्यों में अपनी दृष्टि को अनुरक्त कर दिया तो हमारा वैराग शेष होता चला जाए। एक बार रामकृष्ण स्वामी रामकृष्ण परमहंस वृंदावन आए और बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए मंदिर में प्रविष्ट हुए। काली के भक्त वहां, माँ काली के अन्य भक्त, उनके अलावा कोई दूसरा दृश्य ही उनके सामने नहीं आता था। फिर बांके बिहारी के वृद्ध के सामने स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे पहुंचे कि माँ कहके बेसुध हो। बांके बिहारी का दर्शन किया, उन्होंने उनके मुख से निकला माँ, और उसी माँ शब्द के साथ वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। यानी मध्यहारी की इस विग्रह के रूप में उन्होंने माँ काली का साक्षात कर दिया। ये है भाव की सिद्धि। हम कहते हैं भाव और रस भाव की प्राप्ति हो जाए, रस भाव की प्राप्ति कहां से हो जाए? गंगा में गए तो गंगादास और यमुना में गए तो यमुनादास जब तक बनते रहेंगे तब तक आपको उस महाभाव की सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। तो ऐसी भावना, तो उस भक्ति सामर सिंधु के का जो निचोड़ है वह मैंने भक्ति के रूप में तीन रूप में माना है। एक तो साधन भक्ति, दूसरी भाव भक्ति और तीसरी रस भक्ति, जिसे हम महाभाव कह सकते हैं। भक्ति के तीन स्वरूप प्रशस्त हैं और उन तीन स्वरूप के अनुरूप हम अपने मन को लगा करके साधन करते हैं। साधन भक्ति दान पुण्य आदि यज्ञ यागादि के आदि जो कृत्य हैं वे साधन भक्ति के रूप में आते हैं और उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन वो हमारे यहाँ रस के मार्ग में तुच्छ बताए। और आगे बढ़कर के जब भाव भक्ति की ओर बढ़ते हैं, हम साधन भक्ति करते करते गुरु कृपा से भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं। भाव भक्ति में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, भगवान श्यामा श्याम के प्रति, राधा गोविंद के प्रति सेवा भावना उत्पन्न होती है। श्रवणम कीर्तनम वैष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम नवदा भक्ति की जो प्राप्ति है, इसमें से भाव भक्ति का जो स्वरूप है शांत भाव की भक्ति, करुण भाव की भक्ति, जितने प्रकार के भाव हैं वे सब उस रूप में अनुरक्त रहते हैं, उसमें समायुक्त रहते हैं और हम चौष्टयाम सेवा करते हैं भगवान की। मंगला से लेकर शयन पर्यंत की जो सेवा है ये सब भाव भक्ति के अंतर्गत ही आती है। और इस भाव भक्ति की जब हम पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तब हमें रस भक्ति या महाभाव की भक्ति प्राप्त होती है। और वह रस भक्ति जहाँ नित्य निकुंज में विराजमान श्री राधा गोविंद के स्वरूप का दर्शन हम मंदली भाव से करने में समर्थ हो सकते हैं, सक्षम हो सकते हैं, जब हमारे मन में स्वरूप का ज्ञान विस्मृत हो जाता है तब महाभाव की यह रस भक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक हमें है ज्ञान है कि मैं अमुक हूँ, मेरा नाम श्यामदास है या मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं भूखा हूँ या प्यासा हूँ, ये भाव जब तक हमारे मन में विद्यमान रहता है तब तक रस भक्ति की प्राप्ति कथम अपनी नहीं हो सकती। लेकिन जब हमारा भाव मंजरी भाव से युक्त होकर के क्रमशः मन के रूप में मानसिक रूप में जब हम मंजरी भाव को प्राप्त होते हैं और मंजरी भाव से जब हम निकुंजस्थ श्री श्यामा श्याम श्री राधा गोविंद के निकुंज रंध्रों से जब उनकी रस रहस्यमयी क्रीड़ा का अवलोकन करने लगते हैं तो और अपने आप को बेशुद्ध मान लेते हैं, अपने आप को शुद्धहीन मान लेते हैं, उस समय रस सिद्धि की अवस्था को प्राप्त होते हैं। जैसे महाप्रभु चैतन्य कृष्णा जब भगवान के कीर्तन नाम संकीर्तन का गुणानुवाद करते करते नृत्य करते करते बेशुद्ध होकर गिर पड़ते, वहां उसकी वहां उनकी जो सिद्धि है वो रस की सिद्धावस्था महाभावस्था सिद्धि की भक्ति रस की भक्ति की सिद्धावस्था का स्वरूप उसको मानना चाहिए। जहां हमें बाहर कोई ज्ञान नहीं होता, रूप गोस्वामी पाद की विरति भावना का वैराग भावना का जो उत्कृष्टतम स्वरूप है वह रस भक्ति में महाभाव भक्ति में परिणत हो जाता है। और उसको प्राप्त करने के लिए ही हम ये सारा यहाँ वातावरण सर्जित किए हैं। और इसके अनुरूप गुरु शरणागत होकर जो हम निरंतर भजन कीर्तन चिंतन मनन सेवा अर्चन वंदन ये सब करते चले जाते हैं तो एक दिन ऐसा निश्चित आना है कि हमें उस पराकोटि की रसित अवस्था की प्राप्ति अवश्य होगी और उसमें एकमात्र गुरु चरणों की कृपा ही वांछनीय रहेगी। यह बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो जो वैराग की भावना श्री रूप गोस्वामी पाद को प्राप्त हुई और जिस भावना के फल रूप उन्होंने सारे सुखों का परित्याग करके एकमात्र श्री राधा गोविंद के
निरंतर चिंतन में निमग्न व्यतीत किया, महाग्रंथों का प्रणयन किया। कारण एकमात्र उनके वैराग्य भावना का है, मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए समर्पण का। चेतना निरंतर श्री कृष्ण चिंतन में लगी रह जाए और उसी के प्रति हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित हो जाए, उसको कहते हैं वैराग्य। और जब ये समय आएगा, जब गुरु कृपा हो जाएगी, तो समझ लीजिए कि हमें श्री रूप गोस्वामी पाद के उस महान अवदान का कृतकृत्य स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। हम स्वयं अपने आप को रस की शुद्ध अवस्था में पहुंचा देंगे और फिर कुछ भी करना शेष नहीं रह जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में उनके चरणों में प्रणाम।
अभी हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने रूप गोस्वामी का केवल शिष्ट का विवेचन किया, बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा। तब कुछ विषय में विचार आवश्यक है। वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य तो शंकराचार्य के अद्वैतवादियों में भी तो बहुत वैराग्य है। कृष्ण के प्रति विशेष रूप से अनुराग होने पर अपने आप विषयों में जो वैराग्य होता है, ये उसको कहते हैं
विशेष राग और विराग का स्वभाव
है। कृष्ण में अनुराग न हो और विषयों से वैराग्य हो गया, उसका कोई मूल्य नहीं। इसलिए इस पर विशेष रूप से विचार है। रूप गोस्वामी का इस विषय में क्या विचार है, ये भी देखना। दूसरी बात, रूप गोस्वामी को आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से श्रीमद्भागवत में एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं ये लिखा गया है, पारिभाषिक श्लोक है, ऐसे रूप गोस्वामी ने श्रद्धा से लेकर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव साधन कृष्ण राधा तत्व रस प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव मोहन मादन भाव तक की परिभाषाएं दी है। ऐसा कोई चीज भी अछूता नहीं रखा जिसमें उनकी परिभाषा स्थिर नहीं की। विश्व के किसी भी ग्रंथ में ये सब चीजें नहीं। भक्ति के लिए परिभाषा क्या दिया? उत्तमा भक्ति के लिए उत्तमा भक्ति देखना चाहिए। उत्तमा भक्ति की परिभाषा उन्होंने क्या दी? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ये उत्तमा भक्ति। क्या नारायण में तत्व में यदि भक्ति हो तो उत्तमा भक्ति होगी कि नहीं? क्या राम में होगी तो उत्तमा भक्ति होगी कि नहीं? उसे ब्रज भक्ति होगी कि नहीं? नारायण में मंजरी भाव होगा कि नहीं? कभी नहीं हो सकता। राम में नारायण राम भगवान श्री राम में वो भी रसिक हैं, किंतु मंजरी भाव से उनकी उपासना होगी कि नहीं? कृष्ण स्वरूप के को छोड़ करके अन्य किसी के प्रति जो भाव उत्पन्न होता है शुद्ध सत्व वाला, वो प्रदीप कहलाता है। प्रतीप, प्रतीप माने क्या? छल कुछ, उसमें आभास है। कृष्ण स्वरूप के प्रति होना चाहिए। कृष्ण स्वरूप के प्रति मंजरी भाव होगा, किसी के प्रति नहीं होगा। राम नारायण नृसिंह काली ये सब
रास नहीं कर सकते। काली जी की मंजरी भाव से उपासना है कि नहीं, तो उत्तमा भक्ति कैसे होगी? रूप गोस्वामी का अभिप्राय कैसे होगा? जी कृष्णेन अनुशीलनम भक्ति, ये सब विचार हमें करना होगा। रूप गोस्वामी के जातक ग्रंथों का किसी गुरु से अध्ययन नहीं होगा तब तो बड़ा भारी कठिन है। रूप गोस्वामी भक्तिस्वामी सिंधु में या उज्ज्वल लीन मणि तो बहुत ऊपर की बात। उज्ज्वल लीन मणि की बात रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस देव के ऊपर में कोई लागू होगा कि नहीं? उज्ज्वल लीन मणि की कोई भी चीज, इस पर भी विचार करना है। इसलिए बड़े गंभीर रूप से जो इसका विचार नहीं किया वो वैराग्य ही नहीं। जब तक उज्ज्वल मणि का भाव नहीं आएगा और उसमें विशेष करके कृष्ण के प्रति मंजरी का भाव नहीं आएगा, द्वारकाधीश के भी प्रति नहीं होगा, जसोदानंदन के प्रति भी नहीं होगा, राधा कांत के प्रति होगा। इसलिए इस सब चीजों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। विशेष करके रूप गोस्वामी है कौन पहले समझो। जिसको कवि कर्णपुर कहते हैं, प्रिय स्वरूपे दैत स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निजान रूपे प्रभुरेक रूपे ततान रूपे स्विलास रूपे। क्या कहते हैं वो? महाप्रभु के समसामयिक हैं वो। कवि कर्णपुर जी महाप्रभु जी का अंगूठा पान किया, रूप गोस्वामी को भी जानते हैं, सब गोस्वामियों को जानते हैं, महाप्रभु को जानते हैं, अनुभूति के साथ में जानते हैं महाप्रभु जी की उन पर करुणा है, अपना अंगूठा पान करा तो वो जानते हैं। प्रिय स्वरूप स्वरूप जैसे उनके प्रिय हैं ललिता जी, प्रिय स्वरूप ये महाप्रभु के वैसे ही प्रिय हैं, कम नहीं समझो। मैंने कब बतलाया था ना, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद ललिता और विशाखा सम्मिलित भाव हमारे रूप गोस्वामी में है, ये वैशिष्ट प्रौढ़ीभूत करके सभी भावों को उन्होंने, नहीं तो वो प्रकाश कैसे कर सकते थे? दैता स्वरूप दत्तम आत्मा, आत्मा को जिन्होंने दे रखा है कृष्ण रूप गोस्वामी महाप्रभु के आत्मा के समान, जैसे उनकी आत्मा प्रिय है ऐसे जो प्रिय हैं प्रेम स्वरूपे प्रेम के स्वरूप में सहजादि रूपे सहजाय के महाप्रभु के जन्म जन्मांतर से सहज वो उनके परिकर नित्य परिकर है, कोई साधक नहीं है। रूप गोस्वामी को साधक मत समझो, साधकोचित क्रियाएं की हैं जीव के कल्याण के लिए। जैसे कृष्ण ने भी साधन किया गुरु गृह के आश्रम में संदीपनी मुनि के यहां जाकर के और साधन किया है, गुरु सेवा की और कैसे बसा में भीते हुए लकड़ी को बचा करके ले आए, ये सब साधन है कृष्ण के लिए जरूरी है ये जगत के जीव में। तो सहज रूप में महाप्रभु जब से हैं, सूर्य जैसे जब से है उनकी किरण भी तभी से है, आगे पीछे नहीं, तो ये महाप्रभु के ऐसे प्रिय हैं। निजान रूप है महाप्रभु के निज रूप हैं, प्रभु एक रूप है प्रभु से एक हैं, अन्य नहीं है, उनको प्रभु ही समझो, प्रतिबिंब ही समझो, एक ही समझो। ततान रूपे स्विलास, स्विलास रूपे ततान अपना तत्व रस तत्व जो कुछ था सब उनके अंदर में ब्रह्मा के हृदय में जैसे नारायण ने सब तत्वों को प्रकाश किया वैसे ये सब स्वरूपों को प्रकाश किया। देखो मनोभीष्ट कौन जान सकता है? हमारा मनोभीष्ट क्या है, कृष्ण का मनोभीष्ट क्या है, कौन जान सकता है? जिसको जना देते से जाने जब देह जनाई, जिसको वो जना देते हैं वही जान सकता है। रूप गोस्वामी को क्या किया, रथ यात्रा के समय में महाप्रभु काव्य प्रकाश का या आपका साहित्य दर्पण का ये श्लोक एक बोल रहे, और बोलते बोलते कह, जबकि रथ यात्रा की समाप्ति पर जबकि हमारे हरिदास ठाकुर के कुटीर में आए तो एक पत्र को देखा लिखा हुआ और पढ़ करके प्रतीक्षा करने आए करने लगे, और ज्यों ही रूप आए त्यों ही उनके पीठ पर चापड़ मारा थप्पड़ मारा और क्या कह रहे हैं, मोरे श्लोकेर अभिप्राय ना जाने कौनो जो मोर मने कथा तू जान ली कि मन, तुमने कैसे जान लिया हमारे मन को। और स्वरूप दामोदर जब आए तो उनसे पूछा, क्या पूछते हैं, स्वरूपे पूछे न प्रभु हैया विस्मिते, विस्मित होकर के पूछ रहे हैं, मोर मने कथा जान लो क्या मने, हमारे मन की बात इसने कैसे जना दिया। तो उन्होंने क्या कहा, आपने प्रेरणा करके जना दिया होगा, नहीं तो ये जानेगा कैसे आपका आत्मा, तो कैसे रूप गोस्वामी इनके प्रिय हैं। केवल इतना ही नहीं, क्या किया, कहा मैंने इनको प्रयाग में शक्ति का संचार किया और अनंत जो रस है, रस का समुद्र अनंत अगाध पारावार शून्य, उसका एक बिंदु इसके हृदय में प्रेरित किया। आप लोग भी सभी लोग कृपा करें, हे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य स्वरूप दामोदर राय रामानंद सभी लोग इस पर कृपा करें, जे हमारे मन के अभिष्ट को ये हो। वह मनोभीष्ट था क्या, इस पर विचार, इसके लिए वो कहते हैं क्या, अनर्पित चरिन चिरात करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयि तुम उन्नतोज्ज्वल रसांश भक्ति श्रियम हरिभपूर सुंदर द्यूत कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत मे सचिनंदन। क्या अनर्पित, बहुत दिनों से जो प्रेम नहीं दिया गया, अनर्पित चरिन चिरात करुणया, कृष्ण बड़े करुण हैं, इसलिए राधा जी के भाव को और उनके स्वरूप को स्वर्ण कांति को लेकर के जगत में आए हैं। महाप्रभु की जितना कृपा देखेंगे वो कृष्ण की कृपा नहीं है, वो कुछ अटपटे हैं। राधा जी परम अहेतुकी, कृष्ण को पाना जरा कठिन है कि नहीं, जब ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुखैरालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्य वशीकरण चूर्णम अनंत सत्यम तंग राधिका परचरामि तदा। राधिका जी को महाप्रभु की जितनी कृपा जहां जहां उन्होंने की है, पेड़ पौधों सब में प्रेम का संचार किया, बनेले पशु हिंस पशु सब उनके पीछे पीछे, बाघ सिंह बकरी गाय सभी उनके पीछे पीछे चल रही है, ये किसकी महिमा। कृष्ण को पाना बड़ा भारी कठिन है, ब्रह्मा सू भीष्म पितामह आदि लोगों के लिए भी बहुत कठिन है। तो ये अनर्पित चर करुणया वतीर्ण कलौ, करुणा करके आए, ये करुणा कहां से मिली, ये राधा जी से मिली, राधा जी की करुणा उनके अंदर में है, अभी महाप्रभु के अंदर, महाप्रभु जी राधा भाव में विभावित थे इसलिए कृष्ण वहां पर चुपचाप है, कृष्ण के लिए हाय कृष्ण हा कृष्ण कर रहे, राधा जी के भाव में वो अभी सब कृष्ण ही कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण किंतु राधा जी के भाव में। तो करुणा क्यों, बड़े करुण है इसलिए करुणाशील है। तो क्या किया, स्वभक्ति श्रियम करुणया समर्पयी तुम उन्नत उज्ज्वल रसान स्वभक्ति श्रीम। स्वभक्ति मैंने क्या, अपनी भक्ति। अपनी भक्ति सबसे अधिक किस में है, राधा जी में, राधा जी की भक्ति। वो किंतु जीवों के लिए संभव नहीं है, इसको नहीं देना है। इसको कैसे देना, श्रीयं उसकी शोभा। लता तो राधे का जी है, पत्ता पुष्प फल फूल ये सखियां हैं, और सखियों में सबसे अधिक कौन, सखी नित्य सखी प्राण सखी प्रिय सखी अथवा पृष्ठ सखी प्रिय नर्म सखी या परम पुष्ठ सखी। इसमें सखी कौन है, धनिष्ठा वृंदा इत्यादि जो है ये सखी है। कृष्ण प्रेम कृष्ण स्नेहाधिक, कृष्ण के प्रति उनका स्नेह अधिक है। और नित्य सखी प्राण सखी, नित्य सखी और प्राण सखी, नित्य सखियों में जो श्रेष्ठ हैं वही तो प्राण सखी। और ये प्राण सखी राधा स्नेहा अधिका होती है, राधा में अधिक स्नेह, कृष्ण से भी अधिक। राधिका जी उनकी स्वामिनी जी हैं, कृष्ण से क्या संबंध है, हमारे स्वामिनी के प्रियतम। मदीशा नाथत्ते ब्रजम विपिन चंद्र बिंदा मनेश्वरी नातन नाथत्ते इत्यादि। और प्रिय सखी या प्रिय नर्म सखी ये सम स्नेह है, सम स्नेह जैसे ललिता विशाखा इत्यादि ये सब सखी है। प्रिय सखियों में भी प्रिय श्रेष्ठ है। हाँ, सम होने पर भी राधा जी के तरफ में कुछ झुकाव है, ऐसे नहीं, नहीं तो राधा जी की सखी कैसे होंगे। वो जूथेश्वरी होना पसंद नहीं करते, जूथेश्वरियों का सब गुण रहने पर भी। इसलिए इन सब का विवेचन दिया है, इसका हमारे भट्ट जी ने कुछ किया था तो उसमें कुछ हमको पटपटा सा लगा, इसलिए प्रसंगानुसार हमने कहा। और महाप्रभु जी को रूप गोस्वामी का वैशिष्ट संक्षेप में, अब समय हो गया है 7 बज रहा है, मेरी इच्छा थी जी माधव महाराज वन महाराज रसानंद जी और सब लोग बोलेंगे। हाँ? देखो रूप मंजरी और रूप गोस्वामी का वैशिष्ट किस में है, स्वयं रूप मंजरी कृष्ण की सेवा करती हैं मंजरी के रूप में, किंतु किसी को बतलाया ये यह भाव कैसे प्राप्त होगा, कोई पद्धति बतलाया नहीं, बतलाया रूप गोस्वामी ने। रूप मंजरी होते हुए भी उनका वैशिष्ट अधिक है। उन्होंने उज्ज्वल भक्ति रसामी सिंधु उज्ज्वल ननी विदग्ध नाटक और कौन ललित माधव नाटक पद्यावली और कितने ग्रंथ सब लिखे हैं जीव कल्याण के लिए। रूप मंजरी ने कोई ग्रंथ लिखा, हमारे से तो नहीं लिखा उनको समय फुर्सत नहीं है। और ये महाप्रभु की सेवा करते हुए भी समय निकाल करके महाप्रभु के मनोभीष्ट को पूर्ण करने के लिए इन्होंने इतना सब कुछ किया। रात में जग करके जैसे इन्होंने बतलाया पेड़ों के नीचे रहते थे, कितने मच्छर होंगे बिच्छू और सांप होंगे नंदगांव में, जहां पर नंद तेर कदम है वहां पर सांप अभी भी हैं भरे हुए, और उनके पास में आते नहीं थे, और पत्ते जला करके रात में ये सब ग्रंथ लिखते, एक एक पेड़ के नीचे रहते। ये पेड़ कृष्ण के परिकर हैं, इनके निकट नीचे में इनकी कितनी कृष्ण की लीलाएं हुई होंगी, और वास्तव में ऐसा है। इसलिए उनकी कृपा भिक्षा करने के लिए उनको तो जरूरत नहीं है, किंतु जीवों के लिए शिक्षा दिया ऐसा करो, हम लोग तो करने में असमर्थ है, इतना संभव। इसलिए रूप मंजरी में रूप है, किंतु रूप गोस्वामी में रूप मंजरी है, रूप गोस्वामी में रूप मंजरी है, किंतु रूप मंजरी में
नहीं।
कितने सुंदर स्वभाव है। और एक बात समझो, एक रकानुगा भक्ति होती है और एक रूपानुगा भक्ति होती है। रकानुगा जिसको राग होगा वही वैकुंठ इत्यादि धामों में, ब्रज धाम में, जहां कहीं पहुंचेगा। पहले वो हुआ शुद्ध सत्व भाव, स्नेह मान, पहले रुचि, तब आसक्ति, तब भाव, शुद्ध सत्व अपने आप आएगा। लादनी और संबित के सम्मिलित सार से वो हृदय में जब उत्पन्न होगा तो शुद्ध सत्व होगा, इसके बाद में वह प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय इत्यादि होता है। तो मैं क्या कह रहा था, बिना रागानुगा के आप बैकुंठ में या गोलोक में या कहीं भी नहीं जा सकते। किंतु एक बात समझिए, ये रागानुगा होने से भी कोई जरूरी नहीं है कि ब्रज में पहुंच जाएंगे। और रूपमंजरी का भाव या वो सख्य बात्सल्य मधुर का भाव मिल ही जाएगा, ये नहीं होगा, संभव नहीं। इसमें बात्सल्य रस से पाते हैं, ये भी रूप गोस्वामी के बतलाए हुए साधक से ही होगा, सख्य का भी भाव होगा, यह सब तो ठीक है। किंतु रूपानु किसको कहते हैं, रूप गोस्वामी का अपना जो आंतरिक जो स्वरूप था, उस भाव में जो सेवा करना चाहते हैं उस उनके अनुगत्य में वो रूपानुग है। सभी रागानुगा है वो रूप के अंदर में है, सभी रूपानुग रागानुगा है, किंतु सब रागानुगा रूपानुगा है ये नहीं। रूप मंजरी का अपना जो भाव है, अपने मंजरी भाव से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं वो है रागानुगा, रूपानुगा। और श्रद्धा से लेकर साधन किसको कहते हैं, रूप गोस्वामी ने क्या कहा, कृति भाव स्वसाधन अभिधानित भावस्य प्राकट्यं, कैसा सुंदर विवेचन है, कहीं नहीं है मिलेगा विश्व के किसी भी तरह। भाव किसको कहते हैं, रति क्या है, विशेष आत्मा प्रेम सत जन सुसाम भाव रुचि भी चित्तम आशीन कृत असौ भाव, ये भाव। प्रेम किसको कहते हैं, इसी तरह से मदनाख्य भाव तक सबका डिफिनेशन दिया। ऐसा किसी साहित्य में नहीं मिलेगा विश्व के, इसलिए विश्व के सभी लोग ऋणी हैं, केवल गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के नहीं, करपात्री जी तक जैसे बड़े बड़े विद्वान लोग हमारे रूप गोस्वामी के ग्रंथों का अनुसरण करके उनका कोटेशन ग्रहण कर
व्याख्या करते थे,
व्याख्या कर, उनके पास में है क्या व्याख्या करने, करपात्री जी बहुत अपने समय में जीवन में,
हाँ इसके हम लोग कहीं उदाहरण दे ही नहीं पाते, पीएचडी में, डीएड में, कहीं भी, कहीं भी कोई भक्ति का उदाहरण नहीं।
तो ऐसे और एक बात, परकीय भाव बहुत गंदा है, लोक में भी इसकी निंदा होती है, परलोक में भी इसकी निंदा है। इसलिए रामचंद्र इत्यादि जी ने और सीता जी ने प्रमाण के स्वरूप में उन्होंने इसकी स्थापना की, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। किंतु रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की प्रेरणा से शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर पार्कियावाद को कृष्ण के प्रति, और किसी के प्रति नहीं, कृष्ण के प्रति शास्त्रीय प्रमाणों के बल पर स्था श्रीमद भागवत इत्यादि के श्लोक लिए, पुराणों के श्लोक लिए, वेदों के श्लोक लिए सर्वत्र, और कहा कृष्ण के प्रति पार्कीय भाव यदि कृष्ण हो और उनकी स्वयं की शक्ति, उनकी कलाएं हैं जो स्वरूप शक्ति हैं, और उनकी के जो काय व्यूहा है उनके प्रति, इसी का लोग प्रचार करने के लिए तो जगत में आए। इसलिए कृष्ण के प्रति उनका पार्कीय भाव नित्य सिद्ध है, वो निंदनीय नहीं है। शास्त्रीय प्रमाणों के ऊपर में सभ्य समाज में, लिटरेट समाज में, पढ़े लिखे समाज में, विद्वानों में, निम्बार्क संप्रदाय, हमारा रामानुज के संप्रदाय में इसी के लिए गलता गद्दी में हुई थी। राधा जी को पार्कीय माना, राधा जी को मंदिर से हटा दो, नहीं तो किसी विद्वान को ले आओ। और उस समय हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी वृद्ध भी हो गए थे और क्षेत्र संन्यास उनका था, इसलिए नहीं जा करके अपने शिष्य को बलदेव विद्याभूषण को वहां पर भेजा, और उन्होंने जाकर के ये सिद्ध किया जे परकीय शुद्ध भाव राधा जी को निकाल नहीं सकते, रुक्मिणी निज नहीं यहां पर। और उसके लिए प्रमाण स्वरूप गोविंद भाष्य लिखा, गोविंद अपने आप उनको लिखवाए और उन्होंने लिखा और उसको विद्वत सभा में छोड़ बात हो गए मानने के लिए, राधा जी वहीं पर प्रतिष्ठित रहे। ये सब किसका है, ये रूपानी को वैष्णव है ना। देखो अष्टकालीय लीला हमारे यहां एक प्रधान चीज है, इसमें देखा जाता है कि शंकर जी ने भी पार्वती जी को यह सुनाया, नारद जी ने भी श्रवण किया, और सनकनंदन सनातन भी इसको बतलाया, किंतु इसका सूत्र हम रूप गोस्वामी के ही जीवन में देखते हैं, उनके ग्रंथों में ही देखते हैं। संक्षेप में एक एक लीला का, एक एक काल का, अष्टकाल में से एक एक बस श्लोक किया, और इसी के बाद में परिवर्धन किया हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने गोविंद लीलामृत में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने कृष्ण भाव नामृत में, और भी हमारे जी गोस्वामी ने भी लिया है और हमारे गोस्वामियों ने भी लिया है, किंतु मूल इसके यही है और इसकी व्याख्या करके पूछ लो। इसलिए रूप गोस्वामी के बहुत वैशिष्ट है, मुझे अधिक बोलना भी मना है, इसलिए कुछ त्रुटि हो गई तो श्रोता लोग क्षमा करेंगे और मैं आज ही अधिक बोल गया, और मैं चाहता था कि माधव महाराज, बन महाराज और लोग सब बोले, तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास जी एक कीर्तन से, कल का प्रोग्राम ये है, बोले
बहुत बहुत आपका।